हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स नंबर 22। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागृजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम्। सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीककांता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि प्रे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। अध्याय 8 जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। और इस अध्याय का आज हम श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, जिसमें भगवान हमारे जीवन में जो वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का सही मार्ग बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर मार्ग भगवान बता रहे हैं और बहुत ही सरल मार्ग बता रहे हैं। तो कृपया मेरे साथ साथ भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, पुरुषः स परः पार्थः भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। शब्दात् पुरुषः अर्थात् परम पुरुष, सः वह, परः यानी परम, जिनसे बढ़कर और कोई नहीं, पार्थ हे प्रथापुत्र, भक्त्या लभ्यः त्वनन्यया, वो कैसे प्राप्त होता है? भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा क्या होता है? लभ्य, लभ्य माना प्राप्त किया जा सकता है। तू, तू का मतलब होता है लेकिन। वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनन्यया यानी अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अविचलित भक्ति होनी चाहिए। उससे क्या प्राप्त होता है? पुरुषः स परः पार्थ, वह परम पुरुष भगवान प्राप्त होता है। किससे? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्य, अनन्य भक्ति के द्वारा। और यस्यान्तः स्थानि भूतानि, यस्य जिसके अंतः स्थानि यानी भूत भीतर, भूतानि यह सारा जगत, येन सर्वम इदम ततम, येन यानी जिनके द्वारा, स्वरम सर्वम यानी समस्त, इदम जो कुछ हम देख सकते हैं, ततम यानी व्याप्त। अनुवाद, भगवान जो सबसे महान है, अन्य अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष श्री कृष्ण का धाम है। धर्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रसा कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत हो जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि सातवें अध्याय में बताया गया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी पहले बताते हैं कि जो परम धाम होता है वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का धाम है, उसी को परम धाम। अभी ये कहा, क्यों कहा? क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते पुरुषः स परः पार्थः, तो वो परम पुरुष भगवान जो है उसका धाम प्राप्त करना है, जो क्या हो, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, जो हर जगह पर होते हैं और सारी वस्तुएं जिनके अंदर होते हैं वो सर्वव्यापी हैं, वो अपने धाम में, यस्यान्तः स्थानि भूतानि, वो अपने धाम में भी विराजमान है, वो सर्वव्यापी भी है, यानी कि वो जो सारी वस्तु है उनके अंदर भी विराजमान है, और ये न सर्वम इदम ततम, हर जगह पर भी है, लेकिन फिर भी वो कहाँ पर होते हैं, यस्यान्तः स्थानि भूतानि, हर जगह पर होने के बावजूद भी अपने धाम में होते हैं। तो उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी विधि भगवान कहते हैं भक्त्या लभ्य स्वनन्यया। और भगवान अभी श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि भगवान का वो धाम जहाँ से कभी भी लौटना नहीं पड़ता वो कृष्ण का धाम है, और इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविता, कि वो जो भगवान का धाम है वो चिन्मय आनंद से भरपूर है, और जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी वस्तुएं परम आनंद से परिपूर्ण है, वहां पर दुख दर्द क्लेश इत्यादि कुछ नहीं होता। अभी देखो पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत के विषय में बताया कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, और मेरा धाम कैसा है, आनंद से परिपूर्ण है। तो जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है, वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। अब यहाँ पर जो भी कुछ भौतिक संसार में है वो क्या है, भगवान की, मतलब एक भगवान का गुण है, जो कुछ भी दिखता है भगवान की शक्ति है, यह परा प्रकृति जो है, और अपरा प्रकृति ये जो भौतिक जगत है, और परा प्रकृति जो कि आध्यात्मिक जगत है, वो सब भगवान का ही गुण है। और लेकिन जो भगवान का धाम है उसके अंदर कुछ भी भौतिक नहीं है, वहाँ सब कुछ आध्यात्मिक है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत हो जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि सातवें अध्याय में बताया गया है। जो कुछ भी होता है वो, जो कुछ भी भौतिक जगत में घटता है या किसी भी जगत में, उसका कारण क्या है, भगवान की पराशक्ति, क्योंकि उसके अंदर इतना पावर होता है, उसी के कारण ही जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। जैसा कि सातवें अध्याय में क्या बताया गया, जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति यानी माया द्वारा सर्वव्यापी है। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदम् ततम्, भगवान जो है वो अपने गोलोक वृंदावन धाम में सदैव रहते हैं, लेकिन फिर भी सारी जगहों पर सर्वव्यापित है। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। अब भगवान के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत भी भगवान का है, आध्यात्मिक जगत भी भगवान का है, तो वो अपनी पराशक्ति द्वारा आध्यात्मिक लोक में और अपराशक्ति द्वारा इस भौतिक जगत भौतिक ब्रह्मांड में सदैव उपस्थित रहते हैं। यस्यान्तः स्थानि भूतानि का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपराशक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी कैसे, आध्यात्मिक जगत में वो सदैव रहते हैं, यस्यान्तस्था नहीं भूतान, और ये न सर्वमिदम ततम, यानी हर एक वस्तु में भी होते हैं, तो क्या है कि वो प्रत्येक वस्तु में परा और अपरा शक्ति से निहित है, और इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी। आगे श्री रूपा जी कहते बहुत ही सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। कहाँ लिखा है, पहली लाइन का सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या लिखा है, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, कि वो परम पुरुष भगवान जो है उसकी यदि प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भौतिक यश प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, कोई सुंदरता प्राप्त करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कैसे प्राप्त होंगे, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, अनन्य भक्ति के द्वारा। केवल एक ही मार्ग यहाँ पर भगवान ने बताया है कि किसी अन्य विधि से भगवान के परमधाम की प्राप्ति संभव नहीं है, केवल भक्ति द्वारा। भक्तिया वो भी कैसी, अनन्या, है ना, कि अन्य किसी की नहीं, केवल भगवान। अनन्य यानी अविश्रित भक्ति, बिल्कुल स्थिर भक्ति, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ जब भक्त करता है तो अवश्य ही भगवान बहुत ही सरलता से उसे प्राप्त हो जाते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यस्यांतस्थानि भूतानि का अर्थ है प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। सॉरी, नेक्स्ट पैरा से हम पढ़ रहे थे कि कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द से सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। भक्तिया लभ्यस्त्वनन्यया, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। क्या लिखा है गोपाल तापनी उपनिषद में, एको वशी सर्वगः कृष्णः, यानी उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत ही दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत कर सकता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें से नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे रहते हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ की अध्यक्षता करने वाले भगवान स्वांश चतुर्भुज हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रमा, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5.37 भी पुष्टि है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम यानी गौलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि जब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गौलोक एव निवसत्य खिलात्मभूत, वेदों में श्वेताश्वत्र उपनिषद में 6.8 में कहा गया है, परास्त शक्ति विविदायव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, यानी जिनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। देखिए, भगवान के जो पावर है, भगवान की जो शक्तियां हैं, परास्य शक्ति विविधाय वशूयते, भगवान की जो पराशक्ति है, जो परा शक्तियां हैं, वो इतनी बलवान हैं, उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, कि उन शक्तियों में परमेश्वर से दूरस्थ होते हुए, भले वो कितना ही भगवान से दूर है, इस दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। ऐसा नहीं है कि भगवान गौलोक वृंदावन धाम में है और यहाँ पर जो भगवान की अपरा प्रकृति है वो मनमानी कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारे काम बिगाड़े, नहीं, सुचारू ढंग से, जब मौसम बदलना होता है तब बदलता है, जब ऋतुएं चेंज होती हैं, जब जो जो फ्रूट्स आने वाले होते हैं, जो सब्जियां आने वाली, मतलब मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार सब कुछ बहुत बहुत नियमित रूप से चलता है। उसी उसके साथ साथ हमारे पास जो कि हमारे कर्मों के अनुसार जो जो हमें प्राप्त होना होता है वो हमें प्राप्त होता है, जो नहीं होना होता है वो नहीं मिलता। यानी कि भगवान भले ही अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, परंतु इस भौतिक जगत में भगवान की आध्यात्मिक शक्ति बगैर किसी त्रुटि के कार्य कर रही है। यानी कि जैसे श्री प्रभुपाद जी ने कहा, बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 15 में बताया था, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतिम। कि हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त करके कोई भी जीव इस संसार में जो कि कैसा है, दुखालयम है, अशाश्वतम है, वहां पर कभी भी मुझे प्राप्त करने वाला जीव वापस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। और 16 में भगवान ने बताया कि उस परम सिद्धि को प्राप्त करने के अतिरिक्त आप किसी भी जगह पर चले जाते हो, किसी भी लोक में चले जाते हो, ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावृत्ति अर्जुन, आप भले ब्रह्म लोक में ही चले जाओ लेकिन पुनः आपको इस संसार में आना पड़ेगा। लेकिन तू, भगवान कहते हैं, माम उपेत्य तू, लेकिन यदि मुझे प्राप्त कर लेता है कोई, हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका कभी भी दोबारा जन्म नहीं होता, चाहे वो ब्रह्मलोक में ही क्यों ना चला जाए। फिर भगवान ने ब्रह्मलोक के विषय में बताया, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विधु रात्रिम सुग रात्रिम युग सहस्त्राणाम ते हो रात्रि विदो जना। के मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। उसके बाद भगवान ने कहा, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ के से तारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। आगे भगवान ने बताया, भूत ग्राम एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयामा गमे गमे वशः पात प्रभवत यह रागमे। कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा के जीवन के विषय में सब कुछ बताया और उसके बाद भगवान ने जो श्लोक नंबर 20 है उसमें अपनी एक अलग प्रकृति के विषय में बताया। क्या भगवान ने कहा, बताया, परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना यह ससर विषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यते। कि अभी मैंने तुमको जो परा और ये भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति के विषय में बताया ना, तो उससे भी परस्तस्मात्तु भावोन्यो, उसके अतिरिक्त भी एक परा प्रकृति है, व्यक्त अव्यक्त प्रकृति है जो कि शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे। अब भगवान ने कहा कि जैसे भगवान ने पहले बताया कि ब्रह्मा के शुरुआत दिन के शुरुआत होने से सारे प्राणी अव्यक्त से व्यक्त में आ जाते हैं और फिर जब रात्रि होती है तो फिर पुनः अव्यक्त में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, व्यक्तो व्यक्त सनातना। कि ये ऐसी इटरनल प्रकृति है जो कि जितना भी भौतिक है जगत में जो शाश्वत, ये वो वाली जो शक्ति है, कौन सी, परस्तस्मात्तु भावोन्यो, वो ऐसी शक्ति है कि वो अन्य एक ऐसी प्रकृति है जो अव्यक्त है, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, वह परा है यानी श्रेष्ठ है और कभी भी नाश नहीं होती है, कभी भी नश्यत सो न विनश्यते, कुछ भी हो जाए उसका विनाश संभव नहीं है जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। जब इस संसार का सब कुछ नाश हो जाता है तब भी इसका नाश नहीं होता। तो उस अव्यक्त प्रकृति को जो कि सनातन है, इटर्नल है, और उस जगह को जहाँ पर प्राप्त करने, जिसके लिए भगवान आगे कहते हैं कि अव्यक्तोक्षरम इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांति अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं और जो परम गंतव्य है, परम गंतव्य माने जीवन का लक्ष्य वही है, वहीं तक पहुंचना है, और जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जो एक बार वृंदावन चले गया वो फिर कभी भी भौतिक जगत में नहीं आता। गोलोक वृंदावन धाम से भगवान कहते हैं यम प्राप्य न निवर्तन्ते, वो जगह जहाँ प्राप्त, जिसको प्राप्त करने के बाद आप पुनः कभी भी नहीं आते, तद्धाम परमं मम। भगवान ने यहाँ पर ममा शब्द यूज किया है, यानी भगवान कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा धाम है। और वो कौन, आगे भगवान अपने विषय में बताते हैं, पुरुषः स परः पार्थ, ये जो परम पुरुष भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है ना, जिसका ये जो आध्यात्मिक धाम भी है, तो उस जगह पर प्राप्त होने के बाद क्या होगा, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उस जगह को प्राप्त करने के बाद अब दोबारा जन्म नहीं लोगे, तो फिर वो जगह क्या है, वहां पर कौन है और कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं पुरुषः स परः पार्थ, वहां पर परम पुरुष है, सारे पुरुष, देखो यहाँ पर बहुत सारे पुरुष होते हैं, पुरुष है मना पुरुष है, लेकिन जब यहाँ पर भगवान के लिए लिखा गया है पुरुष से परा पार्थ, तो इसका मतलब है कि वो परम पुरुष है, भक्त्या लभ्यस्त अनन्या, वो केवल और केवल भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब इस संसार में हम देखें तो हर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कैसे, क्योंकि भगवान जो है उसके संसार में जो जो व्यक्ति जिस जिस वस्तु की ओर अट्रैक्ट हो रहा है वो क्या है, षडैश्वर्य। कुछ लोग धन के पीछे पागल होते हैं, कुछ सुंदरता के पीछे, कुछ ज्ञान के पीछे, तो कुछ यश के पीछे, कुछ शक्ति के पीछे, लेकिन ये सब क्या है, भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। ये प्राप्त होने के बाद आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यह सब विनष्ट हो जाने वाली है। तो हमें इन भौतिक वस्तु या भगवान की शक्तियों की ओर ना बल्कि पुरुषः परः पार्थ, उस परम पुरुष भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि एक मनुष्य संसार में जीवन लगा देता है, जीवन जब तक जीता है, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो इसी में बर्बाद करता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिधर भी जाओगे क्या होगा, आब्रह्म भुवनां लोक का पुनरावृत्ति नोर्जुन, वापिस से आना पड़ेगा। तो क्या मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक परम धाम है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, और उस परम धाम को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें कभी भी इस भौतिक, तो धाम कैसे प्राप्त होगा, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या तनन्यया, ये अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होगा। ऐसी भक्ति जो अविचलित हो, अनन्य भक्ति हो, पूरा का पूरा फोकस जो है वो भगवान श्री कृष्ण पर हो। वैसे तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, इनमें से एक शक्ति क्या है, ये भौतिक प्रकृति भी है, जिसको अपरा प्रकृति कहते हैं। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक जगत तो सपने की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में जब वो सपना देख रहा होता है तो क्या होता है, उसमें अगर कोई शेर आता है उसको खा जाता है, या फिर उसको बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है, अपने बहुत ही बहुत गहरे मित्र के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, और फिर वो क्या होता है, उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो सोच रहा है कि वास्तव में मेरे साथ हो रहा है, तो क्या करने लगता है, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है कि मैं ये कष्ट नहीं दे सकता। लेकिन भी क्या होता है, अगर आपका कोई मित्र जो है वो आपको जगाता है कि नहीं नहीं ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, ये तो केवल एक सपना मात्र है, तो भौतिक जगत जो है ये अपरा प्रकृति एक सपने की तरह है।
इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तव में वास्तविकता क्या है? आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत को जब हम प्राप्त करेंगे तभी हमारे समस्त कष्ट समाप्त होंगे, लेकिन जब तक हम सपने में जिएंगे तब तक वो कष्ट हमें महसूस हो रहे होते हैं। हम ऐसा फील कर रहे होते हैं कि कोई आ रहा है मुझे, कोई शेर आ रहा है मुझे खा रहा है, या कोई मुझे मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो उसमें हम परेशान ही होते हैं जब तक कि हम जाग कर वास्तविक अपनी वास्तविक स्थिति को ना प्राप्त करें। उसी तरह यह भौतिक जगत है जो है वो क्लेशों का समुद्र है। पदम पदम यद विपता सर्वत्र दुखम पश्य, एक एक कदम पर विपता है, दुख है, और समस्त जगह पे दुख ही देखा जाता है। तो फिर भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने का तरीका भगवान कहते हैं भक्त्यात् अनन्यया शक्ता, यानी कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोक में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश किया जा सकता है, जैसा कि भक्त्या शब्द से सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। तो केवल एक तरीका है क्या? भगवान की भक्ति करना। अभी जो आठवां चैप्टर है, इस आठवें अध्याय में बताया जा रहा है कि वो जो भगवान प्राप्त, जो परम पुरुष भगवान है, जो पुरुष जहाँ पर कहा गया है, वो किस प्रकार से विभिन्न मार्गों के द्वारा और उसको भगवत प्राप्ति की जा सकती है। जैसे पहले हमने क्या पढ़ा, योग मिश्र भक्त, और आज भगवान बताते अनन्य भक्त, भक्त्या लभ्यस्त अनन्य। तो विभिन्न मार्ग जो है यहाँ पर भगवान ने बताए हैं कि किस प्रकार से भगवत प्राप्ति विभिन्न मार्गों के द्वारा संभव है। तो बाकी किसी भी ये अपरा प्रकृति या फिर इस भौतिक जगत के किसी भी लोक में, किसी भी जगह पे चले जाएंगे तो क्या होगा? पुनरावृत्ति न अर्जुन, पुनः वापस इस संसार में आना पड़ेगा। लेकिन यदि भगवान के धाम में चले गए तो फिर आपको कभी भी आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान के धाम में जाने के विभिन्न प्रकार बताए, जैसे श्रीमद् भागवतम में तीसरी सिकंद में बताया गया है कि परम पुरुष भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान है। तो जो योगी होते हैं, जैसे हम पिछले क्या पढ़ के आए हैं, योग मिश्र भक्त, वो क्या करते हैं, वो अपने मन में परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं। तो बहुत बहुत समय तक वो भगवान का ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले कहाँ पर ध्यान लगाते हैं? भगवान के सुंदर शरण कमलों में ध्यान लगाते हैं। और इस तरह से ध्यान लगाते 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 इस ध्यान का इतना पावर होता है कि जितने भी संसार के अपराध हमारे हृदय में हैं, उन समस्त अपराधों का पहाड़ जो है वो पूरा का पूरा चूर चूर हो जाता है, पूरा अपराधों का पहाड़ समाप्त हो जाता है। और उसके बाद चरणों के बाद जो साधक होता है, योगी होता है, वो क्या करता है, वो भगवान के नाखून जो होते हैं ना, टॉन एल, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये भगवान के जो चरणों के नाखून होते हैं उसके अंदर इतना तेज होता है, इतनी चमक होती है, बहुत चमकदार सूर्य की तरह होते हैं। और इससे क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, इसे बहुत तेज होता है, तो हृदय के अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे हम भगवान के ध्यान में उन्नति करते हैं तो ऐसे वैसे प्रगति होती है हमारे मानसिक और हमारी विचारधाराओं के अंदर, हमारी मन की सोच, हमारी विचार। तो इससे क्या होता है, हृदय के अंदर से सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। उसके बाद भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करते हैं तो उसका उससे क्या प्राप्त होता है, सुकून प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान के वक्षस्थल में यदि हमारी नजर टिक जाती है तो हृदय इतना प्रसन्न और आनंदित हो जाता है। उसके उपरांत भक्त जो है साधक कौस्तुभ मणि का ध्यान लगाता है, और उसके बाद भुजाओं का, भगवान की बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली भुजाएं हैं, उन पे भक्त ध्यान, योगी ध्यान लगाता है। और उसे शक्तिशाली भुजाओं में भगवान ने सुंदर आयुध यानी वेपन्स लिए हुए हैं, क्या, शंख चक्र गदा पद्म, जो समस्त भय का नाश करके अपने भक्तों को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं भगवान। और इन आयुधों के द्वारा, जैसे गदा और चक्र के द्वारा, वो उन सब का सर्वनाश करते हैं जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने वाले भक्तों की सहायता नहीं करते बल्कि उनके लिए कष्ट उत्पन्न कर लेते हैं। तो भगवान जो है वो ये सारे आयुध उठाते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। उसके बाद जब भक्त जो है वो भगवान के दर्शन करता है इन समस्त आयुधों के साथ, तो फिर उसके हृदय में बैठे हुए समस्त भय का नाश हो जाता है, क्योंकि उसे क्या लगता है कि भगवान मुझे प्रोटेक्ट दे रहे हैं। उसी के बाद जो साधक होता है वो भगवान की सुंदर मुस्कान को याद करता है, मुस्कान पर अपना जो भगवान स्माइल है उस पर ध्यान केंद्रित करता है, और उससे क्या होता है जीव दुखों के समुद्र को भी नाश कर सकता है। यानी कि पूरा अगर समुद्र भी होगा ना दुखों का, लेकिन भगवान का यदि कोई हंसता हुआ मुख देख लेता है तो फिर उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता, दुखों का समुद्र भी उसका भी सर्वनाश हो जाता है। तो इसके बाद योगी भगवान के घुंघराली बालों का दर्शन करता है, भौरों की तरह और इस तरह से भगवान का ध्यान जब एक योगी करता है, निरंतर जब ऐसा ध्यान करता है तो क्या होता है वो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो ये एक भगवान ने प्रोसेस बताया पहले कि ज्ञान योग मिश्रित भक्ति में क्या होता है, एक एक अपने ध्यान को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, हर किसी को भगवान पर फोकस करना है। इससे क्या होगा, भगवान के ऊपर फोकस करेंगे और कोई भी भौतिक वस्तु जो है उसकी ओर हमारा आकर्षण नहीं हो जाएगा। माना एक व्यक्ति जो है, जो एक योगी होता है, वो मन कर्म वचन सब कुछ जो है वो भगवान की भक्ति में लगा होता है, हर चीज से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई एक इंद्रिय भी छूट जाती है तो क्या होता है वो हमारे पतन का कारण बन सकता है। जैसे 2.67 में हमने पढ़ा था, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्ति हरतिम प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम बसी। जिस प्रकार एक प्रचंड वायु जो है वो चलने वाली एक कश्ती को उसके बहाव को रोक लेती है, वो दूसरी तरह उसको उसके बहाव को कर देती है, उसी प्रकार एक साधक जिसका एक इंद्रिय भी यदि भौतिक इच्छाओं की ओर आकर्षित होता है तो उसका पतन होना अनिवार्य है। जैसे कि हम जानते हैं अजामिल के विषय में, अजामिल ने क्या किया था, उसने अपनी बाकी इंद्रियों को कंट्रोल किया था लेकिन अपने नेत्रों को कंट्रोल ना कर सका, और क्योंकि उन्होंने एक ऐसा दृश्य देख लिया जिससे कि उसे फिर अपनी पूरी की पूरी भक्ति से हाथ धोना पड़ा, मानी कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसी प्रकार जो कोई भी आज तक जिस जिसका पतन हुआ, जैसे हम विश्वामित्र के विषय में पढ़ रहे थे कि उसने अपनी समस्त इंद्रियों को कंट्रोल किया था लेकिन अपने कानों को कंट्रोल ना कर सका, और जैसे ही मेनिका के घुंघरू छनकने लगे तो इससे उनकी तपस्या का सर्वनाश हो गया। तो भक्तों, जो एक एक इंद्रिय हमें सर्वनाश करा सकती है हमारा, तो हम अपनी इंद्रियों को देखें तो हर इंद्रिय जो है वो उनमें से कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी भगवान में, मतलब भौतिक वस्तुओं में हर वक्त क्या देखा जाए, क्या भौतिक सुना जाए, क्या चीज खाया जाए, उसी में लगी हुई है। तो एक इंद्रिय भी यदि जीव को पतन करा सकती है तो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। तो भगवान बहुत ही सरल बात बता रहे हैं कि बलि आपसे कंट्रोल नहीं होता है, तो आप रहने दो, आप क्या करो, भक्ति करो। वैसे तो ज्ञान मार्ग भी है, योग मार्ग भी है, लेकिन भक्ति मार्ग इतना सरल है कि उसमें क्या होता है, आपकी सारी इंद्रियां जो है वो स्वतः भगवान की भक्ति में चली जाती है। कैसे? कान से आप भगवान की कथाओं को श्रवण करते हो, नेत्रों से भगवान के दर्शन करते हो, मुख से भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, और जिह्वा से भगवान को अर्पण किए हुए प्रसाद का स्वाद लेते हो, इंद्रियों से अपनी स्पर्श इंद्रियों से भक्तों के चरणों को स्पर्श करने का आनंद लेते हो, तो इससे क्या होता है ये सारी इंद्रियां स्वतः कंट्रोल है। अब योगी जो योग साधना के द्वारा कर रहा है वही भक्त बहुत ही सरलता से भक्ति के द्वारा कर सकता है। लक्ष्य क्या है, कृष्ण के ऊपर मन टिकना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस कलयुग में सरल मार्ग क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलय वनास्तय 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में भगवान के नाम भगवान श्री कृष्ण की समस्त शक्तियां जो है वो उन्होंने नाम के अंदर भर दी है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित सिमरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममपि दुर्दैवमी दृश्य विहाचनी न अनुराग। कि भगवान की अनुकंपा है कि अपना सारा का सारा पावर उस महामंत्र के लिए महामंत्र के अंदर डाल दिया। अभिन्नत्वान नाम नामिनो कि भगवान जो है उसका नाम उसके गुण उसकी लीलाएं और वो स्वयं उसमें कोई अंतर नहीं है। तो यदि हम अपनी इन समस्त भौतिक इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवान की भक्ति करते तो उसका सरल उपाय क्या है? भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल महामंत्र को जप करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी विधि नहीं है। हमें केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करना है और भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार एक कंजूस व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपना जो भी धन उसने कमाया होता है तो शाम को क्या करता है, वो चेक करता है, काउंट करता है कि मैंने कितना धन कमाया कितना धन कमाया। तो वापस वो रोजाना रोजाना जितना भी धन कमा के आता है उसको घर पे आके हिसाब लगाता है काउंट करता है। तो इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि एक भक्त का सबसे बड़ा धन क्या है, या महामंत्र। ये भक्तारी का नाम जो है वो भक्त का सबसे बड़ा जो धन है वो है। तो भक्त को भी अपनी जो जपा है उसको इस तरह से काउंट करना चाहिए जैसे कंजूस व्यक्ति कैसे काउंट करते हैं अपने धन को। तो भक्त को भी इसे काउंट करना चाहिए कि मैंने कितना मेरे पास आज का नाम जमा हो चुका है। क्या आज अगर ये जितना मैं भगवान के पवित्र नाम का जप करूंगी उतना ही क्या होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी भगवान के परम नाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस परम पुरुष भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही भगवान भौतिक जगत में कर्म करने हैं लेकिन फिर भी वो अपने वास्तविक आध्यात्मिक लोक में सदैव स्थित रहते हैं। तो वहां पर जो पहुंचता है वो कभी भी इस संसार में वापस नहीं आता है। और उस वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस ये महामंत्र का रट करते रहेंगे तो एक दिन भगवान हम पर कृपा करेंगे और हम अवश्य अपने धाम में स्थान लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं। अरे